माला ठाकुर जी दे दिया, ठाकुर जी बहुत बड़ी माला दे दी। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुन्नवादी पश्चादेशतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नित्य नामने। नमस्ते प्रभुपादय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम जननेस्तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमः। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् यज्ञैर्माष्टुमर्हति यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति
वो नहीं बोले ना क्यों नहीं बोले
यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति
श्लोक पढ़ने में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जिस लय में पढ़ा गया है उसी लय में पढ़ना है, क्योंकि नीचे स्वर गिराना हम देखते हैं कि प्रथम चरण हो जाता है, द्वितीय चरण भी हो जाता है, जब तीसरा चरण आता है तो उसका स्वर गिरा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको सुधारना है, कम से आप लोग सुधारिए और लोगों को छोड़ दीजिए। यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्याम् तथैवैकाम् न यज्ञैर्मार्ष्टु मर्हति। आपसे बोलिए, यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्याम् तथैवैकाम् ठीक है, इसी तरह पढ़ना चाहिए। यथा जिस तरह पंकेन कीचड़ से, पंकाम्भः कीचड़ मिश्रित जल, सूरया मदिरा से, वा अथवा सुराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि, भूत हत्याम पशुओं की हत्या, तथा उसी प्रकार एव निश्चय ही एकाम एक ना कभी नहीं यज्ञ ही यज्ञों के द्वारा मार्ष्टुम प्रायश्चित प्रायश्चित करना अर्हति संभव है। अनुवाद बोलिए, जिस प्रकार गंदले जल को कीचड़ में से छानकर नहीं निकाला जा सकता, अथवा मदिरा के धब्बे लगे पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार पशुओं की बलि द्वारा नरसंहार का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। तात्पर्य पढ़ता हूँ। अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि के लिए ऐसे पशुओं को पुनः जीवनदान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। इस कलह तथा कपट के युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करना संभव नहीं, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले अथवा कराने वाले पटु ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन किसी को पशु वध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशु वध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम बन जाता है, यह भक्तों के लिए ही संभव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा शीर्षक आठवें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। इस श्लोक में कहते हैं महाराज युधिष्ठिर कि शास्त्रों में विधान है कि यज्ञ करने से व्यक्ति बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या रूपी पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है, तो इस पर विचार करते हैं आज श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार। थोड़ा सा समझ में आएगा, कठिन नहीं है। आज मेरे मन में आ गया कि थोड़ा सा देखता हूँ। किंच युद्धे पुंसाम बधो भवतु नाम धर्म, कह रहे हैं कि युद्ध में, धर्म युद्ध में, अथवा यहाँ तो केवल युद्धे की बात करें, युद्धे पुंसाम बधो नाम धर्म भवतु। छात्र धर्म ऐसा है कि एक शत्रु के सामने दूसरा शत्रु युद्ध करते करते मर जाता है तो वह धर्म कहलाता है, वह अधर्म नहीं कहलाता है। वह तो ठीक है, किंतु यहाँ कह रहे हैं स्त्रीणाम तु मया हता बंधव जासम तासम ओसौ द्रोहो अनुदिष्टो उथितस्तम। यहाँ कह रहे हैं 51 नंबर श्लोक का हम अभी अर्थ पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि स्त्रियों के युद्ध में बहुत से स्त्रियों के मेरे द्वारा बंधुओं का वध किया गया और उनके बंधुओं के वध से, पतियों के वध से यो सौ द्रोह, जो द्रोह हुआ अनुदिष्ट, वह तो अनुदिष्ट था, शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं था, अनुदिष्ट था। और ऐसा पाप उत्थित, वह पाप हुआ, वह तम व्यपोहितुम अपाकर्तुम कल्पः समर्थ न अहम्, उस पापों को दूर करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। गृह मेधियई गृहाश्रम विहितई धर्मई, घर गृहस्थी में रहते हुए जिन धर्मों के शास्त्रों द्वारा विधान किया गया है कि इस पाप के बाद इस प्रायश्चित को करने से पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसको कहते हैं गृह मेधि यही गृहाश्रम विहित ही धर्म ही। तो ऐसे धर्मों से भी, इन धर्मों के पालन करने से भी, प्रायश्चितों को करने से भी हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज का जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि ननु, प्रश्न करते हैं, ननु सर्वं पाप मानम तरति तरति ब्रह्महत्या ननु सर्वं पाप मानम तरति तरति ब्रह्महत्याम। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, प्रश्न ननु लगा के करते हैं कि ननु किंतु शास्त्रों में तो कहा गया है कि सर्वम सभी पाप, सर्वम पाप मानम तरति तरति ब्रह्महत्याम, समस्त पापों से व्यक्ति तर जाता है, तरति तरति तर जाता है, यानी दो बार कहने का मतलब निश्चित रूप से तरता है, तरति तरति तर जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्महत्याम, ब्रह्महत्या को भी पार कर जाता है, ब्रह्महत्या से भी व्यक्ति तर जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसा देखा गया ना, इंद्र जी दो दो बार ब्रह्महत्या किए लेकिन मुक्त हो ही गए। और भी हुआ जब वैशंपायन जी से ब्रह्महत्या हो गई थी, तो वैशंपायन जी के शिष्य लोग उनके लिए अनुष्ठान किए और मुक्त हो गए, ऋषि थे उनसे भी हो गई थी ब्रह्महत्या। लेकिन ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्त हुआ जा सकता है, और उसमें तो यहाँ कहेंगे अश्वमेधे न यजते य उचैनमेवम वेद, ऐसा वेद भगवान कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ से ब्रह्महत्या रूपी पाप से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इति श्रुते, ऐसा श्रुति कहती है, पापम अश्वमेधेन नश्यत एव, अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्महत्या रूपी पाप भी समाप्त हो जाता है, ऐसा श्रुति कहती है। अश्वमेधेन नश्यत एव, एव माने निश्चित, गारंटी के साथ कह रहे हैं निश्चय ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है, एवं मन ही सुनिश्चित है कि अश्वमेध यज्ञ का विधि विधान से पालन किया जाए, यज्ञ किया जाए, अनुष्ठान किया जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इति आशंक्य अविवेक विजृंभितम हेतु वाक्यम आश्रित्य निराकरोति। अब इस प्रकार इतना तो कहकर एक शंका उठाते हैं कि अविवेक से उत्थित, अविवेक से, यहाँ टीका में लिखते हैं श्रीपाद श्रीधर स्वामी कि अविवेक से उनके मन में जो प्रश्न बन रहा है उसका निराकरण, उसका आधार लेकर ऊपर कही हुई बात को, पूर्व में कही हुई बात का एक खंडन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हेतुवाद के आधार पर, एक कारण के बाद दूसरा कारण, उसको हेतुवाद कहते हैं। वो निराकरोति, क्या निराकरोति कहते हैं, नीचे वाले लाइन में कहते हैं कि भूत हत्याम, अच्छा भूत हत्याम जगई मार्षुम अर्हति, बहुत बड़े बड़े पापों के तो निराकरण किया गया है यज्ञों से, लेकिन महाराज युधिष्ठिर यहाँ हेतुवाद के आश्रय लेके एक हेतु के बाद दूसरा हेतु जो होता है, अर्थात एक कारण के बाद जो दूसरा कारण होता है उसको हेतु हेतुवाद कहते हैं, और उसको हेतुवाद कहते हैं। तो वो कारण दे रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा पाप खत्म होने वाला नहीं है। कैसे नहीं खत्म होने वाला है? तो कहते हैं कि जैसे पंके न पंकांभ न मार्ष्टुम अर्हति, जैसे गंदले जल से, गंदले जल से गंदले जल को शुद्ध नहीं किया जा सकता है। जिस जल में मटमैला जल है, जैसे बरसाती जल है तो मटमैला जल है, जिसमें मिट्टी लगी हुई है, ऊपर से पानी शुद्ध रहता है लेकिन जब स्पर्श होता है यहाँ तो लाल हो जाता है, ऐसा देखते हैं ना। तो मिट्टी से युक्त जो जल है उसको पंक कहते हैं। तो पंके न, वैसे पंक से पंकांभ, और जो मिट्टी में युक्त जल है तो मिट्टी से युक्त जल से, मिट्टी युक्त जल से, मिट्टी में युक्त जो जल है क्या शुद्ध किया जा सकता है? क्या कीचड़ से कीचड़ धोया जा सकता है? क्या गोबर से गोबर को धोया जा सकता है? मिट्टी से मिट्टी को साफ किया जा सकता है? नहीं, नहीं किया जा सकता है। आने कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता है। जैसे इस वस्त्र में कुछ कपड़े में दाग नहीं है, साफ है, इसमें कीचड़ लगा दिया जाए और पुनः कीचड़ से धोना चाहेंगे तो क्या धो सकते हैं? संभव है? नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि पंके न पंकांभ मार्ष्टुम न अर्हति, उसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं। कीचड़ से कीचड़ को हम साफ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि सुरया सुराकृतम हुआ, सुरा कहते हैं मदिरा को, और सुराकृतम माने सुरा से अशुद्ध, सुरा से सुरया माने सुरा से, तृतीयांत है, आप लोग समझ रूप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, करण में है, जिस करण को बात कर रहे थे ना, कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को करण तृतीया से के द्वारा, तो उसमें आएगा बाल के न, तो सुरया सुरा से सुरया, रमा से रमया, समझे, ध्यान दे लीजिए, नहीं आया होगा ध्यान में तो ध्यान दे लीजिए, ये तृतीयांत विभक्ति है, तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। तो सुरया, यहाँ पंके न भी तृतीयांत एक वचन है और पंकांभ, हाँ सूरया प्रथमांत है, सूरया तृतीया के एक वचन के प्रथमांत है, और सुराकृतम ये भी प्रथमांत है लेकिन नपुंसक है। तो सुराकृतम, जैसे सूरा से मदिरा से अशुद्ध पदार्थ सूरा के समूह के द्वारा अर्थात मदिरा के समुद्र से भी शुद्ध नहीं किया जा सकता है, कि किया जा सकता है, जो पात्र जो वस्तु जो द्रव्य मदिरा से अशुद्ध हो गई है तो क्या मदिरा के समुद्र से वह शुद्ध हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है ना। तो वही कह रहे हैं, इसको हेतु हेतुवाद कहते हैं। तो जैसे कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता है, जैसे सूरा से सूराकृत अशुद्धि को दूर नहीं किया जा सकता है, उसी तरह भूत हत्याम भूत बलि के द्वारा, भूत कहते हैं जीव हंस्या, तो भूत बलि देते हैं ना लोग, कुछ पाप हो गया है तो चलो बकरा के बलि चढ़ा दो, काली माई प्रसन्न हो जाएंगी, देवी मैया प्रसन्न हो जाएंगी, पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग मुर्गा चढ़ाते हैं भूत दूत को, तो इस तरह के अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, अपने किए हुए अपराधों के प्रायश्चित के लिए जो करते हैं, तो ऐसे भूत हत्याम, ऐसे भूत हत्या से, भूत हत्याम तथा भूत हत्या, भूत हत्याम एकाम एव न जगई मार्ष्टुम अरहती। उसी तरह एक भूत से दूसरे भूत की हत्या की प्रायश्चित नहीं किया जा सकता है। इसको पढ़ते हैं टीका से। यथा घन पंकेन पंकाम्भो न मृज्यते तथा वा सुरालेशकृतम अपावित्रम बहव्या सुरया न मृज्यते। हम आस्वादन के लिए पढ़ रहे हैं कि आप लोग विद्यार्थी हैं, थोड़ा समझेंगे कि संस्कृत पढ़ने से कैसे हमको टीका समझ में आएगी। समझ रहे हैं ना, अर्थ तो कर चुके हैं लेकिन जो यहाँ अर्थ है वही यहाँ है, जो मूल में है वही हिंदी में है, जो हिंदी में है वही संस्कृत में है। तो कह रहे हैं कि श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे पंके न पंकाम्भो न मृज्यते, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता है, उसी तरह सूरा के लेस से किया हुआ पाप, थोड़े से भी सूरा के द्वारा, मदिरा के द्वारा जो अशुद्धि प्राप्त हो गई है, उस अशुद्धि को बहव्या सूरया न मृज्यते, बहुत सूरा के द्वारा भी, सूरा के मदिरा के समुद्र के द्वारा भी शुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो हमने एक टीका का आश्रय लिया, घबराइएगा मत आप लोग, एक टीका और पढ़ेंगे। तभी ना समझेंगे कि टीका पढ़ने से क्या फायदा है, संस्कृत पढ़ने से क्या फायदा है। ननु सर्वं पापमानं तर्ति ब्रह्म हत्यां यो अश्वमेधेन यजते इति श्रुते अश्वमेधेन सर्वं पापं विनश्येत। यह निश्चित बात है कि कोई कैसा हो, पाप हो, प्रायश्चित करके तर जाता है, बल्कि यहाँ तक कि अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्म हत्या को भी व्यक्ति तर जाता है, पार कर जाता है, ब्रह्म हत्या रूपी पाप से भी मुक्त हो जाता है। इति आशंकाम दृष्टांतेन निराकरोति। इस आशंका में फिर महाराज को शंका क्यों हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि इति आशंकायाम दृष्टांतेन, इस आशंका में दृष्टांत से निराकरोति, उसको दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं। कैसे, जथेति, जथा शब्द आया है ना, जथा नहीं आया है, तथा आया है, तो जथा के बाद तथा आता है, जथा कहाँ आया है, अच्छा हाँ जथा है, जथा है, क्योंकि जथा और तथा का नित्य संबंध होता है, जथा तथा तयोर नित्य संबंध। इन दोनों में बड़ा नित्य संबंध होता है, जथा है तो तथा है ही और तथा है तो जथा होगा ही। तब कह रहे हैं जथेति पटादि लग्नम पंकाम्भः जथा घन पंके न मृज्यते। जैसे वस्त्र में कीचड़ लग गया है तो मटमैले जल से गंदले जल से हम उसको साफ करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। अस्य दृष्टान्तस्य, इस दृष्टांत का यह आशय है लौकिकत्वात्, लौकिक होने से। लौकिक दृष्टांत दिए कि इस दृष्टांत का लौकिक उदाहरण इसलिए दिए कि दृष्टांत संसार में देखा जाता है कि अगर हम कीचड़ से कीचड़ साफ करें तो नहीं होगा, गंदले पानी से अगर हम वस्त्र धोना चाहें तो वस्त्र साफ नहीं होगा। वस्त्र अगर साफ करने हैं तो हमें साफ जल के आश्रय लेने ही पड़ेंगे। परलोक, किंतु यहाँ भूत हत्या की बात है, वो परलोक में देखा जाता है, यहाँ नहीं देखा जाता है। मरने के बाद ही यातना मिलती है, दुख मिलता है, परलोक में ऐसा देखा जाता है। लौकिकत्वात्, लौकिक से यह सिद्ध हो गया तो परलोक, परलोक में कह रहे हैं न आसंग नाश प्रसंगे, नाश के प्रसंग में युक्तत्वम आ शंक्य आह, उस विषय में कह रहे हैं कि हम यहाँ हत्या जो कर रहे हैं, जीव को मार रहे हैं, एक दूसरे जीव को हत्या किए हैं, तो इसका परिणाम हमको तो मरने के बाद मिलेगा ही, तो उससे हम मुक्त नहीं होने वाले हैं। क्योंकि जब यहाँ कीचड़ से कीचड़ नहीं धुल सकता है, साफ नहीं हो सकता है, तो फिर यहाँ भूत देकर एक बलि, एक जीव के हत्या करके दूसरे जीव के हत्या को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? इस प्रायश्चित को हम नहीं मानते, इससे नहीं होने वाला है। साफ समझ में आ रहा है ना? जब इस संसार में देखा जा रहा है लौकिक दृष्टांत से कि जिस वस्त्र में कीचड़ लग गया है तो उसको कीचड़ से हम साफ करना चाहें तो नहीं हो सकता है, जब भी होगा वह शुद्ध जल से ही साफ हो सकता है। उसी तरह इस संसार में जो बद्ध हो गया है, हत्या हो गई है, पाप हो गया है, उसको भी हम भूत हत्या के द्वारा, भूत हत्याम के द्वारा हम अगर करना चाहते हैं तो मुक्त होने वाला नहीं है। भूत बलि के द्वारा हम चाहें तो नहीं कर सकते हैं, उसको कह रहे हैं। सूर्यति जथावा सुराकृतम अपावित्रम भव्य सूर्या न मृज्यते तथैव एकम प्रमादतः। वो दृष्टांत तो समझ में आ गया है, पहले दे चुके हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, एक विशेष चीज कह रहे हैं गिरधरलाल जी। कह रहे हैं कि बहुत सूरा के द्वारा भी लेस मात्र भी सूरा के दोष को नहीं साफ किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, वैसे ही तथा एकाम प्रमादतः, एक भी प्रमाद से भी। प्रमाद का मतलब होता है कि अपने कर्तव्य को हम जान रहे हैं और जान बुझकर अपने कर्तव्य के प्रति जो हम लापरवाह रहते हैं उसको प्रमाद कहते हैं। प्रमाद हुआ था, महाराज युधिष्ठिर शो कर रहे हैं, जब युधिष्ठिर पूरा सैनिक समाप्त हो गए और पांच लोग, केवल तीन लोग बच गए थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, और भगवान पांच लोगों को लेकर किनारे सो गए। पांडव दल में एक अक्षौणी सेना बची हुई थी, ये लोग तीनों जाके रात्रि में मार दिए, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य मिलकर एक अक्षौणी सेना को मार दिए। एक अक्षौणी नारायणी सेना थी ना, एक अक्षौणी सेना बची हुई थी पांडवों के दल में, उन सबको मार दे। उसी में पांडवों के पुत्र भी मारे गए पांचों, महारानी द्रौपदी के। जब प्रातः काल हुआ तो सब देखे तो महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, ओहो, हमने शत्रु को छोटा समझा, हम जानते थे कि शत्रु अभी जीवित हैं, इतना ज्ञान था, लेकिन हम जानबूझकर इस तरह की लापरवाही, यही प्रमाद है, इसको प्रमाद कहते हैं। वो जानते थे कि हमारे शत्रु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मन में मारे तीन लोग हैं, क्या कर लेंगे। अगर हम इन रात्रि में जग कर पहरा दिए होते जैसे प्रत्येक दिन करते थे, इससे पहले प्रत्येक दिन जैसे हम पहरा करते थे, बाकी लोग सोते थे, उसी तरह आज भी किए होते तो यह दुर्दशा नहीं हुई होती। हमने दुश्मन को छोटा समझा, निश्चिंत सोया, और जानते हुए कि हमारे तीन दुश्मन बाकी हैं, हमने छोटा सोचकर भूल की, इसका आज हमें परिणाम भोगना पड़ रहा है। महाराज विलाप कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, इसको प्रमाद कहते हैं। अर्थात अपने कर्तव्य को जानते हुए भी जो लापरवाही करते हैं उसको कहते हैं प्रमाद। तो ऐसे प्रमाद में भी अगर अपराध किए गए हैं, एक भी ऐसे अपराध किए गए हैं, तो कह रहे हैं कि प्रमादतः जातम भूत हत्याम बुद्धिपूर्वक हिंसा प्रायः यज्ञ मास्तुम शोधयितुम दूरी कर्तुम कोपि न अर्हतीति अन्वय। तो जो करेंगे प्रायश्चित प्रमाद में जो किया गया है उसका भी प्रायश्चित करने का उपाय नहीं है, और जो बुद्धिपूर्वक पाप किया गया है, जान बुझ कर पाप किया गया है, उसको हम यज्ञों से कैसे समाप्त कर देंगे, संभव नहीं है। तो इस प्रकार महाराज अपना हेतुवाद से अज्ञान पूर्ण विचार कर रहे हैं। इस प्रकार हम दो श्लोकों का, दो टीकाओं का आश्रय लेकर थोड़ा सा आप लोगों को एक रास्ता दिए, एक मार्ग दिए कि आप लोग भी संस्कृत पढ़ लेंगे तो ऐसा पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य की तरफ चलते हैं, वो क्या कहते हैं, थोड़ा उसका और साफ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ शास्त्रों में विधान किए गए हैं जिसमें घोड़े या सांड़ की बलि दी जाती है। वास्तव में उसमें पशुओं के बौद्ध करने के लिए नहीं ऐसा किया गया है। भगवान चैतन्य ने इसको बतलाया है चैतन्य चरितामृत में काजी से, चांद काजी से। जब संकीर्तन चल रहा था तो संकीर्तन एक दिन बंद करवा दिया चांद काजी। हरिदास ठाकुर और कई भक्त लोग उधर नाम प्रचार कर रहे थे तो चांद काजी माना कर दिया भक्तों। भगवान चैतन्य महाप्रभु को यह बात जब पता चली तो रात्रि में नृसिंह रूप से भगवान उसको दंड दिए, और दंड दिए तो वो डर गया और इधर अपने आश्रम में चुपचाप बैठे रहे। जब दूसरे दिन सब भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए चले तो चांद काजी जाके भीतर महल में छिप गया, और उसको पता चल गया कि आज निमाई छोड़ेगा नहीं, आज तो मार ही डालेगा, क्योंकि पूरा दल बल के साथ आ रहा है। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु वहां कीर्तन करते हुए गए हैं तो वो बुलाने लगे, वहां खड़े हो गए उसके द्वार पर, कीर्तन करने लगे, बुलाए, अंदर गए लोग बुलाए कर लाने के लिए, कहा कि ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। भीतर से डर रहा है कि लगता है कि आज जीवित नहीं छोड़ेगा। रात में तो केवल खाली छाती में थोड़ा सा नख लगाकर छोड़ दिया है, लेकिन लगता है कि अब सामने आ गए, अब तो आज मार ही डालेगा। तब वो कहते हैं चलो हम आ रहे हैं। जब सामने आए तो वार्ता हुई, उस वार्ता में दोनों बड़े सुंदर वार्ता किए हैं। काजी कहता है कि आप तो हे निमाई संबंध में हमारे भांजे लगेंगे और मैं आपका मामा लगूंगा, क्योंकि चक्रवर्ती नीलांबर जी, नीलांबर चक्रवर्ती जी हमारे संबंध में चाचा लगते हैं, और उनकी बेटी से आप जन्म लिए हैं तो आप हमारे भांजे हुए, गांव के संबंध से आप तो भांजे ही लगेंगे, तो आप मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि हम मारना नहीं चाहते हैं, हम तो आप से कुछ बात करना चाहते हैं। कहे कि ठीक है, बात कीजिए। तो आप डर क्यों रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे सामने? इसके बाद में कहा कि हम क्या करें, हम कीर्तन बंद करवा दिए थे, और रात्रि में जब सोए थे एक सिंह आया और जो हमारे छाती पर चढ़ गया और मेरे छाती में हाथ लगाकर कहा कि मैं फाड़ दूंगा हिरण्यकश्यपु की तरह। हमारे भक्तों को जब महामंत्र करते हुए माना करते हो ना, तो मैं फाड़ दूंगा, आज के बाद ऐसा मत करना। तो मैं कहा कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं अब आपको कीर्तन करने से, आपके भक्तों के कीर्तन करने से नहीं माना करूंगा, खूब कीर्तन कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। छाती फाड़ कर ऐसे कुर्ता निकाल कर दिखा दिया सबको, सब लोग देखे, सब लोग निर्द्वंद हो गए। इसके बाद उन्होंने पूछा, अच्छा ये बतलाइए, ये तो बात ठीक है आप मुक्त तो हुए, लेकिन आप जवन होकर मनो शरीर धारण करके गाय माता है उसके दूध खाते हैं, फिर गाय को आप लोग क्यों काटते हो? तो वो कहा कि हम ही लोग क्या, हिंदू लोग भी गाय काटते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, क्योंकि यहाँ आ गए ना चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग, वहीं से लिए हैं प्रभुपाद जी, तो उसी बात को बतला रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से उसने कहा कि हम ही लोग नहीं, हम मुसलमान ही गाय नहीं काटते हैं, हिंदू लोग भी तो गौ काटते हैं। कहे कहाँ काटते हैं, कि क्यों नहीं यज्ञ में बलि देते हैं? तब महाप्रभु चैतन्य देव कहे कि यज्ञों में जो पशु बलि देते हैं, वास्तव में वो पशु बलि नहीं देते हैं, वहाँ वेद के मंत्रों के द्वारा बूढ़ी गाय को या बूढ़े सांड को काटा जाता है, और उसको मंत्र के द्वारा पुनः स्वस्थ जीवित किया जाता है। तो उससे वेद के मंत्रों के क्षमता को बतलाया जाता है कि वेद में कितनी भारी शक्ति है, और उस मंत्र को सिद्ध करके, उस मंत्र के विधि विधान से पाठ करके, अनुष्ठान करके सारे पापों से मुक्त हुआ जा सकता है, यह बतलाया गया है, और यह शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है, इसमें कोई दोष नहीं है। काट कर खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा, समझाया। तो कहा कि ठीक है, अब हम भी ऐसा नहीं करेंगे, हम भी नहीं काटेंगे। तो चांद काजी उनके कहने से बदल गया, पूरा अपने समय में, अपने राज में पूरा गोहत्या बंद करवा दिया। यही चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं, इसी बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने से यज्ञकर्ता को पाप से मुक्त कर देता है, या यज्ञकर्ता पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि अगर ऐसा कोई योग्य व्यक्ति न हो और पशुओं को काट कर यज्ञ करना चाहता है, तो वह पशु हिंसा के भागी बनता है, वह दोषी बनता है, क्योंकि वैसा मंत्र आज जपने वाला कोई नहीं है, वेद मंत्र का उच्चारण करने वाला नहीं है, उस तरह के पढ़ने वाला नहीं है, उतना शुद्ध कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ऋषि नहीं है आज के युग में, कलयुग में न उतनी शुद्ध वस्तु है, न उतना शुद्ध स्थान है, न उतना शुद्ध यजमान है, न उतना शुद्ध वातावरण है, वैसी हमें क्षमता है, इसलिए आज के युग में वह संभव नहीं है। किंतु महाराज युधिष्ठिर के उद्गार को यहाँ यज्ञ के रूप में संकेत करते हैं प्रभुपाद जी, कि महाराज ने यज्ञ के विधान किए हैं, क्योंकि यज्ञों से भगवान की प्राप्ति होती है। तो सतयुग के धर्म त्रेता के धर्म, द्वापर के धर्म अलग अलग हैं और कलयुग के धर्म भी अलग हैं। तो इन सारे धर्मों का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, न कि जीव हिंसा। यहां संकेत करते हैं कि कलयुग में महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि केवल हरिनाम से ही हो सकता है। महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं, किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में केवल हरिनाम ही एकमात्र संस्तुत है, ऐसा महाराज युधिष्ठिर का विचार है। क्योंकि चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन उपाऊ, कलयुग में खासकर यज्ञ का विधान है तो वह नाम संकीर्तन ही है, और नाम संकीर्तन जो यज्ञ है वह सबके लिए है और सरल है और हिंसा रहित है, सब समय में सब काल में सब अवस्था में किया जा सकता है, और इसको कर कर व्यक्ति सहज में भगवान को प्राप्त कर सकता है। सतयुग में भगवान को ध्यान करके प्राप्त करते थे, त्रेता में सोमयाजी वाजपेय अश्वमेध राजस्वी आदि यज्ञ करके प्राप्त करते थे। अश्वमेध का मतलब यज्ञ में अश्व का वध किया जाता, फिर वह जीवित होकर स्वस्थ नाया होकर सोने के समान चमचमाता हुआ निकलता, ऐसा विधान है। और गोमेध में गाय को या सांड को काट कर डाला जाता था और वह बूढ़ा सांड या बूढ़ी गाय स्वस्थ होकर सुंदर होकर चमचमाती हुई निकलती थी, तो यह विधान था। वाजपेय का अर्थ होता है कि केवल छेना खाकर उस यज्ञ को संपन्न किया जाता है। सोमयाजी जिसमें सोमरस पी कर ही इसको चुआया जाता है, एक लाता होती है, सोमरस माने मदिरा नहीं जो दमन में चलता है, कौन मत समझ लीजिएगा, वहां तो सब दमन करते हैं, अपने आप को हिंसित करते हैं, नरक में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो सोमलता रस की बात की जा रही है सोमयाजी में, तो उसमें विशेष एक नियम होता है मंत्रों के द्वारा और पूर्णिमा के दिन उसको चुआया जाता है, तो उसको देवता लोग भी पीते हैं, ब्राह्मण लोग भी पीते हैं, ऋषि लोग भी पीते हैं और उससे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उसको सोमयाजी कहते हैं। तो सोमयाजी या वाजपेय या राजसूय सुमेध आदि बड़े बड़े जो यज्ञ हैं इनको अनुष्ठान करके भगवत धाम को प्राप्त कर लेते थे। द्वापर में षोडशोपचार विधि से ठाकुर की पूजा आराधना करके प्राप्त करते थे, लेकिन कलयुग में ये सब असंभव है, इसीलिए महाराज युधिष्ठिर यज्ञ के संकेत कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ, तो वह केवल हरिनाम के लिए ही संस्तुत है, वह यज्ञ केवल महामंत्र के लिए हरिनाम यज्ञ ही है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। वो क्या है, कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जयतोमखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौतत हरि कीर्तनम भागवत। कलयुग में केवल भगवान श्री हरि के कीर्तन से वही चीज प्राप्त होगा, और युग चहु श्रुति नाम प्रभावु कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, कलयुग में ही नहीं भगवान की नाम की महिमा सब युगों में है। अगर कोई कहे कि भगवान के नाम की महिमा केवल कलयुग में ही है क्या, तो कह रहे हैं गोस्वामी जी कि नहीं, सभी युगों में, चहुश्रुति चारों वेदों में है, तो वेदों में है तो इसका मतलब कि वेद तो अनादि है, अनंत है, स्वयंभू है, वो स्वयं भगवान ही है। तो जैसे भगवान सब काल में रहते हैं वैसे वेद भी सब काल में रहते हैं, तो वेद में जब भगवान के नाम का महिमा वर्णन है तो उनकी महिमा भी अनादि है, फिर भी यहाँ कह रहे हैं कि चहु श्रुति चहु युग चारों श्रुतियों में चारों वेदों में चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव है, कली विशेष नहीं आनोपव, किंतु कलयुग में विशेष रूप से भगवान श्री हरि के नाम की महिमा है, उस नाम को विशेष रूप से जप सकते हैं। जैसे कलयुग में चारों तरफ देखते हैं बहुत दोषे दोष भरे हुए हैं। इन सारे दोषों को समाप्त करने के लिए भी एकमात्र भगवान का नाम है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम उस को आश्रय लेकर पार हो सकें, तो वह है भगवान का नाम। इस पर हमारे भैया गौर कृष्णदास जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं गांव का। कहते हैं कि बरसात के दिन में पानी भर जाता है चारों तरफ खेतों में, और धान की रोपाई हो जाती है, तो जितनी पगडंडियां हैं सब समाप्त हो जाती हैं, और कोई मुख्य रास्ता मार्ग रह जाता है जिसको पकड़कर हम गंतव्य पर जाते हैं। ठीक उसी तरह कलयुग में भी सारे साधन जो हैं, सारे मार्ग जो हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, जितने भी अष्टांग योग कर लीजिए, सतयुग के हों या त्रेता को हों या द्वापर को, सब फेल हैं कलयुग में। कलयुग में सब रास्ता बंद है, केवल एक रास्ता है, यहाँ से निकलेंगे, रोड पकड़ेंगे, ऐसे घूमते हुए ऐसे जाके फिर जाएंगे हम, तब दमन जाएंगे, है ना, या बॉम्बे जाएंगे। तो हम राजमार्ग को पकड़ कर जाएंगे, जहां से चाहे वहां से जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। तो सारे साधन बेकाम हो चुके हैं, बेकाम इस रूप में हो चुके हैं कि हम उसके लायक है ही नहीं, हम में वो क्षमता ही नहीं है कि हम उसको संपन्न कर सके। इसलिए हमारे लायक जो है वह हरि नाम ही है, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिशाली और समस्त पुरुषार्थों के देने वाला है, सर्वार्थ सार दाता अगर कोई है तो वह हरि नाम है। वह राजमार्ग के समान है, राजमार्ग को पकड़कर हमने अपने लक्ष्य को जैसे प्राप्त करते हैं, उसी तरह कलयुग में भगवान श्री हरि के नाम के द्वारा हम अपने सारे पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेंगे, अर्थ को, धर्म को, काम को और अंत में मोक्ष को। और जो पंचम पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन, उसको भी प्राप्त कर लेंगे। तो वह हरिनाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा यज्ञ है इस कलयुग के लिए। कली काले धर्म हय नाम संकीर्तन, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्रायर जजंति ही सुमेधस। तो जो सुमेधस हैं, जो बुद्धिमान हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनकी बुद्धि भगवान के तरफ है, धर्म के प्रति है, तो ऐसे धार्मिक लोग, ऐसे बुद्धिमान लोग कलयुग में भगवान के नाम के द्वारा ही दो अक्षरों से जो युक्त है, क्री और ण, क्री और ण से जो युक्त है अढ़ाई अक्षर से क्रिस और, तो इस द्वयक्षर नाम वाले द्वैवर्णात्मक ब्रह्म हरिनाम संकीर्तन का जो कोई भी आश्रय लेता है वो सहज में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस नाम को महाप्रभु श्री चैतन्य देव कहते हैं खेद व्यक्त करते हुए कि हाय रे, भगवान ने नंद नंदन यशोदा नंदन रास बिहारी कुंज बिहारी निकुंजेश्वर गोविंद हरि मुरारी अनेकों नाम यहाँ प्रकट किए हैं, और जिस नाम में अपनी सारी शक्तियों को भर दिए हैं और जिससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है साधक को, फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि उसमें हमारा अनुराग नहीं हुआ। इसमें कोई बहुत शुद्धा शुद्धि के भी विचार नहीं है कि हम शुद्ध अवस्था में बैठकर ले सकते हैं, शुद्धा शुद्धि के भी कोई विचार नहीं रखे, जब चाहे जहां चाहे जितना चाहे उतना ले सकते हैं। और एक नाम ऐसा कामधेनु है कि नाम रूपी कामधेनु ऐसा है कि जो चाहो जब चाहो जितना चाहो उतना प्राप्त कर सकता है और जहां चाहो, फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसका उच्चारण नहीं करते हैं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिद्रसा मिहा जननानुराग इह न अनुराग जनि, इसमें हमारा अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ। हमारा अनुराग कहाँ है? संसार में। महाप्रभु ली अपने लिए नहीं कह रहे हैं, महाप्रभु तो महाप्रभु हैं, वो तो भगवान हैं, साक्षात ईश्वर हैं, वो तो ब्रजेन्द्रनंदन जय सची सुत हैल सही बलराम हैल निताई, वो तो केवल रूप बदल कर आए हैं भक्त भाव में आस्वादन करने के लिए, राधिका रानी के श्री महाभाव को आस्वादन करने के लिए आए हैं। वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम जीवों के लिए बोल रहे हैं। अपने आचार्य धर्म सिखाना न जाए यह तो सिद्धांत गीता भागवत का, वो अपने आचरण के द्वारा वो सिखा रहे हैं, क्योंकि वो भक्त भगवान हैं। भक्त भगवान होते हुए भक्त के रूप में आए हैं, तो भगवान भक्त हैं इसलिए वो सिखा रहे हैं स्वयं आचरण करके। किंतु यह हम लोगों के लिए है, हम लोगों की दुर्दशा है, हम लोगों की ऐसी मानसिकता है कि संसार में जहाँ तहाँ तो मन बड़ा आराम से रमण करता है, लेकिन जब भगवान का नाम लेना होता है आराम से लेने ही नहीं देता है, है? फिर भी जैसे तैसे करके लेते हैं, चलो अच्छा है बढ़िया है जैसे तैसे करके भी ले लें, लेकिन चाहिए कि इसमें हम अनुराग उत्पन्न करें, प्रेम करें इससे, लेकिन नहीं हो पाता है, ये हमारा दुर्भाग्य है। कैसा है नाम करेंगे साधक के लिए, काम के प्राप्ति, अर्थ के प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति सब कुछ देने वाला है, धर्म की प्राप्ति सब कुछ देने वाला है, और जितना चाहिए उतना देने वाला है। कलिम सभा जयंता जा गुणग्ञः सारभागिनः जत्र संकीर्तने नहीं हो सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कराने वाला है जिससे हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि न जनि अनुराग, यह हमारा दुर्भाग्य है। और इतना समर्थशाली नाम है, साधन है, वो हमको प्राप्त है, तो क्या 4 बजे भोर में ही जपना जरूरी है? देश काल का नियम का प्रतिबंध है तो करेंगे ना, इसका भी प्रतिबंध नहीं। स्मरणे न काल, स्मरण करने के लिए, उच्चारण करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जपने के लिए कोई देश काल सुधा सुधि आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, और सारी शक्तियों को भर दिए हैं, सब पुरुषार्थों को देने वाला है, क्योंकि तत्र अर्पित निज सर्वशक्ति, तत्र माने तत्र तस्मिन तेसु वा नाम नामनी नाम नामसु वा, उन सारे नामों में राम गोविंद हरि मुरारी जितने आपके नाम हैं उन सारे नामों में अपने शक्तियों को आप अर्पित किए हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसको नहीं ले रहे हैं, इसमें हमारा अनुराग ही नहीं हो रहा है। तो यही नाम है इस युग के लिए सर्वोपरि यज्ञ, यही है, और इसी को जब हम अपना लेंगे तो हमारा निस्तार हो जाएगा, अन्य किसी की जरूरत नहीं है। भगवान के भक्त कभी अपने इच्छा के लिए कोई काम करते ही नहीं है। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि भगवान के भक्त अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं है, जो कुछ करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर भी जो कुछ किए वो भगवान के लिए, लेकिन यहाँ जितने भी तर्क दे रहे हैं ये संसार के लिए है, हम लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है। इसी के साथ हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, गौर निताई की, आचार्य गण की, जय जय श्री राधे श्याम।